ओम शांति। लौकिक मतलब कि शरीर का नाम जो है वो हेमलता है और मैं 45 ईयर्स हो गए होंगे ज्ञान में चलते हुए। ब्रह्मा बाबा के पहले मैंने ज्ञान लिया था, लेकिन ब्रह्मा बाबा को मिलने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। लास्ट क्लास में हम आए थे, 68 में लास्ट आए थे। उस समय हम स्टूडेंट के रूप में थे, तो पढ़ाई के लिए इंडिया में तो मार्च अप्रैल में एग्जाम्स होते हैं ना, तो इसीलिए एग्जाम की तैयारी करके और हमने बुकिंग वगैरह भी करा दी कि एग्जाम के बाद हम जाएंगे, लेकिन वो सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन मैं बाबा को पत्र लिखा था, जिसको कि निश्चय पत्र कहते हैं, और उसका भी हम आपको राज बताएंगे कि उसका क्या इफेक्ट हुआ हमारे ऊपर कि आज यहाँ तक पहुंच चुके हैं, नहीं तो शायद हम यहाँ तक पहुंच भी नहीं पाते। तो पहले तो हमने उस समय जब मैं ज्ञान में चली तो मैं मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी, तो हमने पूरी पढ़ाई की, फिर 2 साल प्रैक्टिस भी किया, और 1974 जैसे जब दादी जानकी फॉरेन में गई थी तो वो कईयों को खींच लिया। तो वैसे तो लंदन के लिए ही मुझे आने के लिए कहा गया था, लेकिन उस समय नहीं हो पाया। और करेबियन में ट्रिनिडाद और गयाना के अंदर वहां पे सर्विस शुरू हुई थी और बहुत फास्ट वहां पे सर्विस गई, क्योंकि वहां के जो होस्ट थे हमारे वो मिनिस्टर थे, जिसका आप मुरलियों में सुनते हुए होंगे कि अंकल आंटी, तो उनके पास हम गए थे और वहां पर अच्छी सर्विस हुई। वीआईपी होने की वजह से वीआईपी सर्विस कैसे की जाती है, क्या करना होता है, कैसे मिलना होता है वीआईपीस को, मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, वो वहां पर हमने सीखा, क्योंकि इंडिया में तो हमको इतना चांस नहीं मिला था, क्योंकि हम पढ़ाई करके थोड़ा जॉब करके चले गए थे, इतनी ट्रेनिंग भी नहीं थी हमें। तो वहां पर जाने के बाद ही जो हमने सीखा है वो ही हमने सीखा। लेकिन जब हम जा रहे थे, क्योंकि उस समय बहुत सारे निमंत्रण मिले थे फॉरेन कंट्रीज के लिए, कनाडा का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, मॉरिशस का, अफ्रीका का, बहुत सारे ऐसे निमंत्रण मिले थे, और उसमें से कुछ निमंत्रण का रिस्पॉन्ड दिया गया था। तो उसी टाइम पर हम सेंटर पे भी नहीं रहते थे उस समय, मैं नहीं रहती थी सेंटर पे, कभी कभी ऐसा वीकेंड में कभी रहते थे, लेकिन जैसे सेंटर निवासी बन करके रहे ऐसा मुझे वो नहीं मिला था, चांस भी नहीं मिला था, और पढ़ाई की वजह से मैं ज्यादा रह भी नहीं पाई थी। तो सीधा मैं समझो घर से ही वहां पर गई थी। तो एक दो ट्रेनिंग यहाँ पे किए थे मधुबन में, कॉलेज स्टूडेंट की कैसी ट्रेनिंग होती है ऐसे कैसे करके, बाकी जैसे सेंटर पे रह करके उस समय जब डिमांड होती है तब तो जाना ही होता है। तो दादी ने मुझे कहा था कि आप दोनों कर सकते हो, आप अपने सर्टिफिकेट भी लेके जाइए, वहां पे जॉब भी कर सकते हो और ये सेवा भी कर सकते हो। तो इस प्रकार हम 1976 में हम यहाँ से निकले थे, तो अभी 39 ईयर्स हो गए हैं वहां पर। और आपको इतना नहीं मालूम होगा वो देशों का कि वहां पर जो है वेस्ट इंडीज, जिसको बोलते हैं वेस्ट इंडीज का नाम तो सुना होगा, जहां से क्रिकेट टीम आती है और वो बहुत एक्टिव क्रिकेट टीम होती है, और लास्ट ईयर उन्होंने वर्ल्ड कप भी लिया था। तो ऐसी जगह पे से आए हैं, वहां का वेदर जो है वो इंडिया जैसा ही है, जैसे बॉम्बे और समुद्र का किनारा चारों तरफ है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहां पर, ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, कभी हम वहां पर शॉल और स्वेटर कभी नहीं पहनते, यहाँ से ले जाते हैं वहां पे रख देते हैं फिर वापस ले आते लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है, आबहवा बहुत अच्छी है, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, और बहुत एक एक मकान दूर दूर पर होते हैं जैसे प्रत्येक के अंदर, और बहुत झाड़ और फलों के फूलों के झाड़ होते हैं बहुत। मैं तो कहती हूँ कि मेरी वहां पर जाने से मेरी हेल्थ भी अच्छी हो गई, क्योंकि इतना फ्रेश खाना मिलता है, फ्रेश फ्रूट मिलता है, झाड़ों से तोड़ के खा लो उसी टाइम पर। तो ऐसा वहां का वेदर है और वहां की चीजें भी वैसी ही है। तो वहां पर हमें 39 ईयर्स हो गए हैं। पहले हम गयाना में गए थे और गयाना के अंदर जो अंकल आंटी थे वो उनके पास, वो ही हमारे होस्ट थे, उनके पास नहीं रहते थे, दूसरे मकान में बाबा के का मकान बना के दिया था उन्होंने, तो वहां पर हम रहते थे और वहां ही सेवा करते थे। फिर वहां से ये सोच पड़ा कि भाई करीबियन में इतनी सेवा, इतने कंट्रीज हैं, 25 से भी ऊपर कंट्रीज होंगे और छोटे छोटे आइलैंड है, तो वहां पे भी सेवा की जानी चाहिए। तो उसके हिसाब से मैं और मोहिनी बहन थे न्यूयॉर्क में जो थे, तो वो फिर न्यूयॉर्क में आए और मैं ट्रिनिडाद में गई और तब से वहां ही मैं बेस बना करके रखा है। बाकी सब जगह पे मैं जाती आती रहती हूँ। तो अभी दादी के निमंत्रण के ऊपर खास हमें निमंत्रण मिला, जो 35 ईयर्स से ऊपर ज्ञान में है, उनको दादी के साथ में 100 साल मनाने का निमंत्रण मिला। तो हमारे पास के 10-12 लोग आने वाले हैं, आ चुके कुछ, आ चुके हैं कुछ, आ रहे हैं वो बनाने के लिए। तो उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर आए हैं और हर साल आते रहते हैं, ग्रुप्स को लेकर के आते रहते हैं, तो वो चांस मिलता रहता है। वहां पे हिंदी बोलने का इतना चांस नहीं रहता है, इंग्लिश में सब कुछ करना पड़ता है। तो जब यहाँ पर आते हैं हिंदी में बात करने को मिलता है तो बहुत खुशी होती है। वहां पे कुछ कुछ लोग होते हैं जिससे हम हिंदी में बात करते हैं, बाकी वहां पर इंग्लिश में ही करते हैं। वहां के लोग जो है वो कुछ कंट्री के अंदर डोमिनेट है, इंडिया से ही गए हुए हैं। मतलब 150-200 साल के पहले जब ब्रिटिश का रूल था तो उस समय वहां पर उस देशों की खोज हुई थी और खोज होने के बाद उनको लगा कि यहाँ पर देश बसाने चाहिए। तो पहले अफ्रीका से लोग लेके गए थे, तो वो इतना काम ना कर पाए क्योंकि वो इतने एक्टिव नहीं थे और उनको खेती बाड़ी का भी इतना अनुभव नहीं था। तो यहाँ पर यूपी और बिहार के लोग जो है यहां से उनको लेके गए थे। तो अपना कल्चरल रीति से मंदिर बनाना और रामायण का पाठ करना, मंदिर अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं वहां पर, हिंदी में भी वो लोग पाठ पूजा करते हैं, लेकिन उसका फिर हर एक का ट्रांसलेशन देना पड़ता है उनको। तो वहां पर बहुत अच्छे अच्छे लोग, वहां पे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं ये दूसरे इंडिया में आ गई हूँ। लेकिन जब हम उनसे बात करते थे, उनकी जो विचारधाराएं थी इतनी इंडिपेंडेंट है विचारधाराएं, जैसे विचार जो होते हैं बहुत इंडिपेंडेंट है। और सब प्रकार के वहाँ फेस्टिवल मनाए जाते हैं, दिवाली भी मनाई जाती है तो होली भी मनाई जाती है और सब लोग मनाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू लोग ही मनाते हैं, सब लोग सब फेस्टिवल अच्छी तरह से मनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब कुछ आते हैं, वो भी उसमें भाग लेते हैं। और वहां पर इंडिया से भी जो कोई भी जाते हैं उनको बहुत प्यार से मिलते हैं, यहाँ के एक्टर्स बहुत जाते हैं, सिंगर्स जाते हैं, डांसर्स जाते हैं। तो यहाँ पर भी कभी कभी हमें मिलने को नहीं मिलता है इंडिया में, वहां पर सबको मिलने को मिल जाता है और सबसे बातचीत हो जाती है। यहाँ के पॉलिटिशियन से भी वहां पर मिलते हैं। एक बार हमारे पास शंकर दयाल शर्मा जी आए थे प्रेसिडेंट के रूप में और वो खाना भी नहीं खाते थे, कोई कांदा लहसुन नहीं खाते थे। तो उन्होंने पूछा कहाँ पर से मैं खाना खा सकता हूँ, तो दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया गया, एक हरे रामा हरे कृष्णा का और एक ब्रह्म कुमारीज। ये दो ही ऑर्गेनाइजेशन है जो कांदा लहसुन नहीं खाते हैं। तो उन्होंने फिर बहनों को कहा कि बहनें हमारे लिए बनाए, ब्रह्म कुमारी बहनें हमारे लिए खाना बनाए तो हम खा सकते हैं। तो उन्होंने प्रेसिडेंट के मकान में ही एक हमको किचन बना के अलग से दिया और उनका खाना बनाने के लिए अभी हमको बोला गया था। यहाँ पर डॉक्टर कोमोद है, वो गयाना में थी उस समय, तो वही वहां उनके लिए खाना बनाती थी और मैं ट्रेनर में उनके लिए खाना बनाती थी। तो सब लोगों से मुलाकात भी अच्छी हो जाती थी वहां पर। तो इस प्रकार से वहां पे ये सब छोटे छोटे कंट्री होते हुए भी बड़ी बड़ी सर्विस हो जाती है, क्योंकि वो छोटे छोटे कंट्री के अंदर भी जाते हैं, पोप जाते हैं तो उनके सामने भी बैठ करके बात करते। दलाई लामा गया था, उनके साथ भी हम लोग बैठ करके बात किए। वो दलाई लामा बोलते इतना दूर आप लोग का सेंटर है, शांति बहन जी ऐसे करके बात करते थे। और मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ बात करने के लिए आते हैं और बातचीत भी करते हैं। तो दूर बहुत है, यहाँ से यहाँ पर अभी दिन चल रहा है तो वहां रात चल रही होगी। नहीं वो तो यहाँ पे होगा ना, हमारी तरफ वो गेस्ट के रूप में आए थे तो उनसे मुलाकात पर्सनल हो जाती है। जैसे कहने का भाव ये कि वहां पर जो भी वीआईपी जाते हैं, क्योंकि हमारा इंडियन हाई कमीशन से अच्छा कनेक्शन होता है तो हमको रिसेप्शन में जरूर बुलाते हैं। तो इस प्रकार से कोई किसी को भी हम मिलने के लिए, जैसे महेंद्र कपूर है या कोई भी अनुप जलूता है, ऐसे ऐसे लोगों को हम घर में भी बुला लेते हैं, क्योंकि जब वहां जाते हैं तो उनको खाने का वहां का खाना उनको इतना पसंद नहीं आता है, तो वो भी हमारे पास आके गए, घर में भी आके मतलब बाबा के घर में भी आके गए थे। तो इस प्रकार की वहां पर सर्विस होती है। भाषा तो इंग्लिश ही चलती है, एक ही देश है जहां पर वो भाषा हिंदी बोलते हैं, वो भी बिहारी हिंदी बोलते हैं, वो है सुरीनाम। तो वहां पर वो जो बोलते हैं वो हम समझ लेते हैं और हम जो बोलते हैं वो समझ लेते हैं वो लोग। तो इस प्रकार से वहां पे सेवा होती है। और अभी तो भारत में आए हैं तो आप लोगों से मिलने का चांस मिल रहा है। तो आज का तो टॉपिक तो ऐसे ही रखा है, सेल्फ रिस्पेक्ट का रखा है। अच्छा पत्र की बात बताऊं? अच्छा जब हम बाबा के ज्ञान में आए तो 68 में आए थे हम, मैं 68 में आई थी। और उसी समय पहले पहले हमारे पास ज्ञान चला था, उसके पहले हमारे पास नहीं आया था। मैं हैदराबाद से आई हूँ, हैदराबाद से निकली हूँ आंध्र प्रदेश से, तो उसी समय ज्ञान चला। और मंदिरों में ज्यादा सेवा होती थी तो ज्यादा करके हमारे पास माताएं बहुत निकली थी वहां पर, और माताएं ज्ञान में चलती थी। और उसके बाद हमारे सब रिश्तेदार भी कुछ चलने लगे थे, अभी भी वो चलते, जो पुराने लोग हैं अभी तक टूटे नहीं है, कोई ने शरीर छोड़ा है लेकिन टूटने वाले बहुत कम थे। जो फाउंडेशन कहीं पर भी आती है ना वो फाउंडेशन चलती रहती है। तो हमारे टीचर ने, महेंद्र भाई जो थे, कुलदीप बहन के पिताजी, उन्होंने कहा कि आप एक निश्चय पत्र लिखो। तो उस समय तो जब हम निश्चय पत्र लिख रहे थे उस समय तो मुझे कभी लग ही नहीं रहा था कि मैं एक अच्छी ब्रह्मा कुमारी बन सकती हूँ, क्योंकि जब शुरू शुरू में आते हैं तो कितने बंधन होते हैं, हर प्रकार का बंधन होता है। तो लग ही नहीं रहा था कि ये एक, मैं ऐसा इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मैं ब्रह्मा कुमारी बन सकती हूँ। और घर वाले भी थोड़े नैरो माइंडेड जो होते हैं, ये भी गीत जो है दादी प्रकाशमणि ने सेलेक्ट किया था उनके जाने के कुछ दिन पहले, एक एक घंटा में एक बार। और यही गीत दो तीन हिस्सों में बांटा जाता है, तो दो मिनट डेढ़ मिनट दो मिनट का गीत बजता है, तो उनकी भी याद आती है साथ साथ, बाबा की याद के साथ साथ में। तो जब हम मैं ज्ञान में चली तो ऐसा कहा गया कि भाई निश्चय पत्र लिखिए। और पढ़ाई तो करते थे, पढ़ाई के लिए भी काफी फाइट हुआ मेरे लिए। तो जब हमने पत्र लिखा तो हमने अपना नाम लिखा, अच्छी तरह से फोटो खिंचवा करके फोटो भी लगाया सामने अपने पेपर के ऊपर अच्छी तरह से। 15-20 लोगों ने लिखा था पत्र, तो हमने भी लिखा था और खूब अच्छी तरह से परिचय दिया कि हम स्टूडेंट है, कुमारी है, ज्ञान में चलते हैं, बाबा आप आ गए हैं, आपको आपके ऊपर पूरा पूरा निश्चय है, आप आपके ही बन के, किसी के बन के नहीं रहेंगे, ऐसा मतलब बहुत हमने बहुत प्यार से, बहुत निश्चय से, जैसे नशा होता है ना शुरू शुरू का, तो नशा कितना तेज होता है, तो वो नशे से हमने पत्र लिखा। तो जैसे ही हम पत्र लिख करके कमरे से बाहर निकल रहे थे, तो बरामदे में हमारे पिताजी बैठे थे। तो बोला कहाँ जा रहे हैं? तो हम तो उनको बड़े नशे से बोल रहे हैं, हम ये पत्र लेकर के जा रहे हैं, निश्चय पत्र लेकर के, हमको भगवान के ऊपर इतना विश्वास है, ऐसा कैसा करके हमने निश्चय है, हम जा रहे हैं पत्र देने के लिए जा रहे हैं, माउंट आबू में ये हमारा पत्र जाएगा। तो मतलब कि उनका रिएक्शन जो था ना बहुत उल्टा निकला। तो बोला अभी यहाँ बैठो। मैंने कहा ठीक है बैठ जाते। बोला आज से आप यहाँ से कभी भी सेंटर पे नहीं जाएंगे, इतने निश्चय की परीक्षा ना। तो मैं तो चलो थोड़ा तो फीलिंग आई मुझे, लेकिन मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई थी, मतलब जैसे ज्ञान में आते थे जितनी भी किताबें थी ना सब पढ़ ली थी, बाबा की जीवन कहानी की भी किताब पढ़ी थी और भी किताबें पढ़ी थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हमारा भी एक ऐसा ही पाठ बंधन वाला हो जाएगा, शायद वो बाबा की जीवन कहानी में है उसके जैसा ही मेरा पाठ है, शायद इसीलिए मैं नहीं जा सकती। लेकिन तन को तो कोई भी ताला लगा सकता है, लेकिन मन को कोई ताला नहीं लगा सकता है। तो फिर बाबा को उसी रीति से हमने बोला, बाबा हम तो आपके बन गए हैं, अभी हम किसी के नहीं बन सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर नहीं जाने देते तो कोई बात नहीं, हम घर में बैठ के भी तो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ऐसे करके मैं गई वापिस अपने कमरे में, और उसके बाद एक दूसरा पत्र मैंने लिखा कि बाबा ऐसा ऐसा जैसा मैंने पत्र लिखा है तो ऐसी की बात ऐसी हो गई है। तो मैं दूसरा फोटो उसी का फोटो निकाल के उसे पे लगा करके, और फिर निश्चय में लिखा कि मैं तो आपकी बन चुकी हूँ और कोई मेरे मन को नहीं चेंज कर सकता है। और मैंने वो पत्र छुपा के रख दिया। मैंने कहा मैं तो कॉलेज में जाती हूँ तो मेरे को कौन बंधन डाल सकता है, नहीं तो मैं जाऊंगी तो आते समय या जाते समय वो पत्र ड्रॉप कर देंगी। तो ऐसा करके मैंने सोच लिया अपने मन में। और उसके बाद दूसरे दिन जब मैं कॉलेज में गई तो वापिस आते के साथ में मैंने वो सेंटर पे गई। तो सेंटर पे जा, सेंटर भी क्या था उस समय, तो एक छोटा सा कमरा था, एक कोने में खाना बनता था, एक कोने में हम लोग चटाई पे बैठ करके ज्ञान सुनते थे, चार पांच चित्र लगे हुए थे, इतना मजा आता था वो जमीन में बैठ करके सुनने में भी, पटरानियों पर उससे भी ज्यादा मजा, अभी तो हम सोफा चेयर पे भी इतना मजा नहीं आता है, उस समय बहुत मजा आता था, इतना नशा रहता था ना। तो फिर उसके बाद मैंने वो पत्र दे दिया, और फिर बाद में उन्होंने बोला कि आप मुरली पढ़ के जाओ। मैंने कहा मुरली तो पढ़ सकते हैं ना, आकर के मुरली पढ़ सकते हैं। तो हमने मुरली भी पढ़ी और पत्र भी दिया और फिर हम घर चले गए। फिर वो बहन जी ने हमारे को बोला कि भाई आप मुरली पढ़ने के लिए ही आ जाया करो। तो मैंने कहा ठीक है मैं मुरली पढ़ने के लिए आ जाऊंगी गुप्त रीति से, क्योंकि शायद मेरा पाठ ही गुप्त रीति का है, कोई बंधन वाला हो गया अभी तो मेरा पाठ, ऐसा सोच करके मैं मुरली पढ़ने के लिए जाती थी। लेकिन दूसरी मुरली जब मैं पढ़ी वहां पर जाकर के सेंटर पे, तो फिर उसके बाद मेरे को बंधन नजर नहीं आने लगा। मैंने कहा कि मैं पढ़ने लिखने वाली, कॉलेज में जाने वाली स्टूडेंट हूँ और मैं इस बंधन में क्यों रहूं, मैं इस बंधन में नहीं रहने वाली। इतनी मुझे शक्ति मिली, मतलब कि वो पत्र जो है मधुबन पहुंचा भी नहीं होगा, लेकिन उस पत्र की जो शक्ति है मुझे आने लगी। और फिर मुरली की दो मुरलियों के बाद जो है मेरे अंदर इतनी शक्ति आई कि आज तो मुझे अपना जीवन का फैसला करना है, आज मुझे जाकर के पूछना ही पड़ेगा कि मुझे इस प्रकार से भगवान की याद अच्छी आती है, मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए। तो वो निश्चय से मैं वहां पर गई, अपने घर में गई और अपने पिताजी को बोला कि भाई देखो, अभी कभी ऐसा बोलने की हमारी ताकत नहीं थी, कभी हम उनके सामने बोले नहीं, जो बोलते वो हम लोग कर लेते, छोटे होते तो क्या करेंगे। मेरी एज मतलब 18 या 20 होंगी इतनी। तो उसमें फिर मैंने उनको बोला कि देखो आज मैं हिम्मत करके जबरदस्त होकर के मैं जो उनके साथ बात करना चाहती हूँ और बाबा मुझे ताकत देगा। तो मैं उस समय जाकर के अपने पिताजी से बोला कि देखो हम कितने जगह पे गए हैं, भक्ति किया है, ये किया वो किया, लेकिन इस संस्था में जाने से हमें भगवान की अच्छी याद आती है और हमारा योग लग जाता है। तो हम इस तरीके से ही भगवान को याद करना चाहते हैं। और गवर्नमेंट ने हमें छुट्टी दी है कि यहाँ पर तो इंडिया के अंदर तो फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, जो आप जो चाहते हैं वो उस तरीके से भगवान को याद कर सकते हैं। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ऐसा फ्रीडम ऑफ वर्शिप है उसके अंदर। तो मैंने कहा गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ वर्शिप दिया है और हमको इस प्रकार से भगवान की याद करने से हमको मजा आता है, तो अब हमें छुट्टी दीजिए। तो पहले तो वो शॉक में आ गए, वो कुछ न बोल पाए, क्या बोलेंगे, अभी तक तो कभी इसने बोला नहीं मेरे सामने और आज इसने इतना जबरदस्त क्वेश्चन हमारे सामने रख दिया है। पहले तो कुछ बोले नहीं, 5-10 मिनट तो साइलेंस रहे, हम भी साइलेंस में रहे, वो भी साइलेंस में रहे, फिर उसके बाद बोला ठीक है अगर आप ये चाहते हैं इस प्रकार से अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन किसी को भी ये नहीं बोलना है कि मैं शादी नहीं करूंगी कभी भी, क्योंकि वो समाज वाले इसी वो सिखा दिए होंगे ना, कुछ बातें हो गई होंगी समाज में तो उन्होंने सुन लिया होगा कि ब्रह्म कुमारियां बनते हैं तो शादी वादी नहीं करते हैं, तो वो नहीं बोलने का, अब बोलना हम पढ़ाई कर रहे। तो हमने कहा ठीक है, वो तो पढ़ाई कर रहे, 4 साल है अभी, 4-5 साल तक पढ़ाई करनी है, फिर उसके बाद वो करना है, तो हमको बोलने की जरूरत नहीं, कोई पूछे तो बोला हम तो पढ़ाई कर रहे। उन्हें खुद ही युक्ति दिखाई कि भाई ऐसा बोलना कि पढ़ाई कर रहे। तो फिर उसके बाद हम रोज सुबह में क्लास में जाते थे, एक दिन भी हम मिस नहीं किए। एक बार इतनी कंडीशन खराब हो गई थी कि कर्फ्यू लग गया था वहां पर, कुछ हिंदू मुस्लिम का कुछ हो गया था तो कर्फ्यू लग गया, तो उसमें भी हम भाग गए, इतना नशा चढ़ा कि उसमें भी भागे, पुलिस का भी डर नहीं लगा हमें। सुबह सुबह निकले हम, मैं और हमारी माता जी थी, हम गए थे तो वो भी हमारे पिताजी ने कहा कि हमने घर में ही बैठ करके योग लगा रहे थे, भोग का दिन था, भोग लगा रहे थे, तो वो आके हमारे से मजाक करने लगे, अभी देखते हैं हम आपका क्या, कितनी शक्ति है आपके अंदर, कर्फ्यू लगाए, कर्फ्यू में भी पहुंचना चाहिए, तब मैं देखूंगा कि ज्ञान ये आपका पक्का। वो तो मजाक और टेस्ट का रूप देने लगे, हम तो वहां ऐसा भागे पूछ रहा है दोनों जने, और जहां जहां मकान होते थे वहां थोड़ा रुक जाते थे कि भाई अगर पुलिस देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई हम यहाँ ही रहते हैं, ये हमारे रिश्तेदार का मकान है, ऐसा करके हम भागे वहां। फिर वहां पर जाने के बाद हमारे टीचर लोग ने कहा आप ऐसे कैसे आ गए, हमने कहा हमको तो कोई नहीं देखा, हम तो आ गए यहाँ पर, तो दरवाजा खुला, मुरली पड़े सुने और भोग लगा के भोग खाया, फिर आए वापस, बोले अभी वापस नहीं जा सकते आप, जब तक कर्फ्यू नहीं खुलेगा तब तक आपको नहीं भेजेंगे, हम ये लॉ नहीं तोड़ने वाले। तो हमने कहा ठीक है, तो मतलब कि ये है कि बाबा हम गलती भी करते तो बचा दिया हम लोगों को, कुछ कोई किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि एक तो अंधेरा भी होता है ना, सुबह सुबह 5 बजे का टाइम होता है, तो 5-5:30 बजे का टाइम, अंधेरे में कौन, पुलिस भी सोती रहती है उस तो हाँ पहुंचा ना, पत्र पहुंचा, उसका जवाब भी आया हमारे को, जवाब भी आया, और मतलब उस पत्र के बाद से मेरे बंधन टूटते गए एक के बाद एक के बाद। फिर तो ट्रेनिंग के लिए भी मुझे मधुबन में आने दिया, फिर मेरे को मधुबन में आने की भी छुट्टी मिल गई, सब प्रकार की छुट्टी मिल गई। फिर उसके बाद पूरी पढ़ाई होने के बाद हमारे पिताजी ने कहा मैंने तो आपको पढ़ाई तक छुट्टी दी थी, अभी क्या। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा जब हम कमजोर आत्मा थे तब तो आपने छुट्टी दे दी, और जब हम स्ट्रांग हो गए तो आप हमें पूछते हैं, अभी आप पूछने से क्या फायदा, अभी हमारे ऊपर मेहनत करने से क्या फायदा। तो हमने उनको मन में सोचा और उनके लिए बोला कि हम तो इसमें ही रहेंगे, जॉब भी करेंगे और ये ज्ञान में चलते रहेंगे। तो उसके बाद तो फिर हमें यहाँ पर आने का चांस मिला, मतलब कि हमने देखा कि पत्र का मैजिक जिसको कहते हैं वो हमने अपने जीवन के अंदर देखा, नहीं तो आज तक मैं ये नहीं सोच सकती कि मैं यहाँ बैठ करके आपको कुछ सुना रही हूँ, अनुभव सुना रही हूँ, ऐसा कोई सोच नहीं सकती थी। लेकिन ये पत्र का जो है, तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि कुछ भी हो जाए ना, बाबा से जरूर बात करनी चाहिए और पत्र लिख देना चाहिए, चाहे वो पहुंचे ना पहुंचे, पत्र लिख करके रख देना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारी हमारी बातें होती है ना, ठीक हो जाती है। और कोई भी प्रॉब्लम जब होता है तो सबसे पहले बाबा को बोलो, नहीं जैसे घर भरा होता है दिल के अंदर तो जो पहले आता है उसको बोल देते हैं हम लोग। जब वो आत्मा कमजोर हो, जो आत्मा पावरफुल हो, कोई सीनियर हो, कोई जूनियर हो, कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, मतलब उसके सामने हम बोल देते हैं। लेकिन मैंने ये प्रैक्टिस की है क्योंकि हम रहते जहां पर है, हमारे पास फोन भी बंद लगाएंगे तो भी उसका भी लगे ना लगे, फोन का पैसा भी लगता है, इंटरनेशनल फोन करते हैं, तो जहां अकेले अकेले होते हैं स्टूडेंट के साथ में, स्टूडेंट को क्या बोलेंगे हम, तो वो तो पहले बाबा को बोलना पड़ता है। तो हम तो सीधा बाबा के पास या तो बाबा के कमरे में जाके बैठ जाते हैं, या पहले हम उनको बोलते हैं, बाबा को बोलते हैं, बाप दादा को पहले बोल देते हैं, फिर उसके बाद जो भी हमारे सामने साधन आते हैं तो उसके अंदर हम बातचीत कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे कि सोल्यूशन मिल जाता है, जैसे कि दुनिया के अंदर बोलते हैं ना सब चीजें इंस्टेंट मिलती है, इंस्टेंट कॉफी मिलती है, इंस्टेंट दूध मिलता है, दूध पानी में डालो तो घुल जाता है, चाय घुल जाती है, कॉफी घुल जाती है, कई प्रकार के इंस्टेंट चीजें मिलती है। तो हमने कहा कि अभी ये इंस्टेंट बाबा की याद रखनी चाहिए हमें, नहीं मतलब कि जब भी कोई हमारे सामने आता है कुछ, तो पहले बाबा को याद करे, किसी को याद न करे, फिर बाबा की याद के बाद जो है जो भी प्रेरणा मिले, ना हमें टेलीफोन याद करना है, ना हमें पुलिस याद करनी है, ना कोई रिश्तेदार याद करने हैं, ना कोई लौकिक याद करना है, पहले बाबा की याद करनी। और उसका मैंने कई बार मिरेकल भी देखा है। एक बार हम गयाना से आ रहे थे 18 जनवरी का प्रोग्राम करके, और जो हमारी प्लेन थी वो बहुत जल्दी होती थी, 5 बजे जैसे, तो मतलब 5 बजे होती है तो 3 बजे तो निकलना होगा, उससे पहले ही निकलना होगा। तो एक भाई था, उसने बोला कि बहन जी मैं आपको लेके चलता हूँ। और मुझे पता था कि वो भाई नया है, मतलब अभी उसने कार खरीदी थी। उसने बोला तो मैंने कहा कभी ऑफर नहीं करते हैं, आज ऑफर किया, चलो मैं इसके साथ चली जाती हूँ। तो मैं उसके साथ में गई, तो अभी रात का समय था, 2-3 के बीच में था समय, और बीच में जो है वो कार जाके शटडाउन हो गई। अभी उसको कुछ पता भी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई जंगल कोई लाइट भी दिखाई नहीं देती थी इतना दूर तक, तो अभी क्या करें। तो उस समय मेरे को ऐसा लगा कि मैं क्लास भी देके आई थी, उस समय क्लास मैंने कराया था इंस्टेंट रिमेम्बरेंस के ऊपर का, और उस समय उस साल में ये इंस्टेंट रिमेम्बरेंस का कुछ पॉइंट्स भी आए थी मधुबन से, तो क्लास भी कराया था, उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो उसके बाद पहली प्रैक्टिस मैंने वहां पर की, सुनसान जगह पर जहां लाइट दिखाई नहीं दे रही है, जंगली जंगल है, कार शटडाउन हो गई है, मुझे एयरपोर्ट पे जाना है। तो मैंने कहा बाबा जैसे ही बाबा मैंने कहा, तो भाई तो पहले क्या है बाहर निकला, उसने थोड़ा बंदेज खोला, देखने लगा, ऐसा ऐसा करने लगा। मुझे अंदर में लग रहा था कि उसको कुछ पता नहीं है, बेचारा नया है, खरीदा है अभी कार उसने। तो मैंने कहा कि भाई साहब अभी अंदर आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पर, और अभी जो चाबी है ना उसको घुमाओ। तो उसने ऐसे ही किया, वो चाबी घुमाते के साथ में कार चलना शुरू हो गई एकदम। तो ये जो है इंस्टेंट रिमेम्बरेंस जो बाबा की होती है ना, पहला बाबा याद आए और कोई चीज याद ना आए, वो फिर हमने उसका मिरेकल देखा और सीधा चाके वो कार जो है ना एयरपोर्ट पे पहुंची, और फिर हम अच्छी तरह से पहुंच गए। तो इस प्रकार से बाबा की याद से जो है कई बार हमें इसकी याद आती है, उसकी याद आती है, जहां हमारा मन जहां जाता है उसकी याद आती है। लेकिन जब बाबा की याद आती है पहली बात, उसमें कितना टाइम लगेगा बाबा की याद के लिए? आपको 10 सेकंड के अंदर कोई कुछ खराब होने, कोई डेंजर नहीं होने वाला है, 10 सेकंड के लिए याद करना। फिर बाबा हमें ये प्रेरणा देता है कि किसको याद करे, किसको फोन करे, किसको क्या करे, तो फिर वो उस अनुसार हो जाता है। तो हम तो जब हम ज्ञान में चले और जब हम फॉरेन कंट्री में गए तो हम अकेले ही जाते थे, कहाँ कहाँ पर भी अकेले जाते थे। इंडिया में कभी हम अकेले रहे नहीं किसी भी जगह पर, यहाँ पे रखते भी नहीं है। सेंटरों के अंदर शायद एक बहन नहीं को साथ में नहीं, कोई ना कोई को साथ में रखना पड़ता है, नहीं दो बहनें कम से कम होनी चाहिए। अब वहां पे गए हम काम, हमें दूसरी बहन मिले कहाँ से, तो अकेले ही हर जगह जाने के लिए। हमारे पास मकान भी बहुत बड़ा, इतना बड़ा मकान, सबसे पहले बार फॉरेन कंट्रीज के अंदर गयाना में सबसे बड़ा मकान मिला था, लंदन में भी इतना बड़ा मकान नहीं था, उससे भी बड़ा मकान मिला था। तो हम लंदन में जाते, बाबा बाबा हमें हमारे पास इतना बड़ा मकान है और आप लंदन में इतना छोटा सा मकान दिए हुए है, आप यहाँ पे बड़ा बना दिए वहां छोटा बना दिए, यही इच्छा होती थी। लेकिन फिर बाद में वहां पर भी कितना बड़ा, अभी तो विशाल हो गया लंदन, विशाल, इतना बड़ा विशाल हो गया। लेकिन वहां वीआईपी थे ना ज्ञान में शुरू शुरू में, तो वहां ही सबसे बड़ा मकान मिला था हमारे को। और उसके बाद वहां पर भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, जैसे अभी कहते हैं कि गोल्डन एज के अंदर विमान होते हैं छोटे छोटे, वहां पर जाने के लिए, तो वैसे ही विमान जैसी सर्विस थी वहां पर भी, क्योंकि मिनिस्टर साथ में कहीं भी जाते थे, उनके पास पांच सीटर जगह होती थी या छह सीटर होती, तो वो हम लोगों को भी ले जाते थे, कहीं सर्विस के ऊपर लेके जाते थे, तो वहां पर पायलट के पास में बैठ करके भी जाने को मिलता था। तो वो इस प्रकार के वहां पर सर्विस थी, तो हमको तो लग ही नहीं रहा था कि अभी क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो कहने का भाव है कि इंस्टेंट रिमेम्बरेंस बहुत जरूरी है, लेकिन जहां कहीं भी हमारा अटैचमेंट होगा ना, वहां उसकी याद हमारे सामने आती है, तो वो भी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, एक हमारे पास माता जी आई थी, हम कहा कौन से कंट्री में गए थे मुझे याद नहीं, बोला बहन जी देखो हमारा जो बेटा है ना बहुत अच्छा है, मैं बीमार हो गई ना तो मेरे बेटे ने इतनी सेवा की, मेरी बहू ने इतनी सेवा की। तो सबसे पहले ऐसा होता है माताएं बहनों को, माँ बाप को खास करके, कि जब भी कोई माँ बाप के बच्चे जो है उनकी सेवा करते हैं या कुछ भी रिटर्न देते हैं, तो पहला ये संकल्प हमारे मन में आता है कि हमने शायद अच्छी पालना की है, नहीं? अगर नहीं मदद करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद मेरी पालना में कोई कमी रह गई, ऐसा होता है ना। लेकिन ज्ञान के अंदर हम ऐसे शब्द नहीं बोल सकते, ज्ञान के अंदर हम ऐसे शब्द नहीं बोल सकते मैंने बहुत अच्छी पालना की इसीलिए मेरा बच्चा मेरे को मदद करता है, या मैंने अच्छी पालना नहीं की है इसीलिए मेरा बच्चा इतनी मदद नहीं कर रहा है। वो तो दुनिया वालों के लिए है, वो शब्द दुनिया वालों के लिए, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए तो ये शब्द है कि कोई भी मदद करे, हमें बाबा मदद कर रहा है, कोई बेटा या बहू या बेटी मुझे मदद नहीं कर रही है, लेकिन बाबा उनके द्वारा करा रहा है, हा? अच्छा लगता है ना, बाबा उनके द्वारा करा रहा है। क्योंकि अगर मैं कहूँ मेरा बेटा ने मेरी मदद की है या मेरी बहू ने बहुत सेवा की है, तो उसकी उसको ब्लेसिंग तो मिलेगी, लेकिन हमारी ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन अगर बाबा के द्वारा वो हमें करा रहे हैं, बाबा उनके द्वारा करा रहे हैं, तो उनको डबल ब्लेसिंग मिल जाएगी, नहीं? एक तो हमारी ब्लेसिंग मिलेगी और उसके साथ साथ में बाबा की ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि बाबा उनको करा रहा है। तो अभी हर चीज के अंदर हमें ये सोचना चाहिए कि हमने तो सब कुछ दे दिया है, तन मन धन सब कुछ दे दिया है, रिश्तेदार भी हमें बाबा को दे दिया। हम कहते हैं बाबा के बच्चे हैं, अब बाबा के बच्चे है तो फिर क्यों हमारे बच्चे बन गए, है? थोड़ी मदद करते तो इतना, एक बार हमारी एक बहन बड़ी बहन ने कहा कि जब बाबा इतना करता है आप लोगों को कुमारियों की क्लास किया, तो कुमारियों को बोला कि आप बाबा आपके लिए इतना कर रहा है, बाबा के घर में रहते खाते पीते सब कुछ, कभी बाबा की इतनी प्रशंसा नहीं करते हो, लौकिक में ना 500 रुपया भी दे देंगे ना तो वो लौकिक की बातें करते रहेंगे, मेरे लौकिक भाई ने इतना दिया, मेरी लौकिक बहन ने इतना दिया, मेरी लौकिक उसकी प्रशंसा करते रहते, बाबा इतना करता है तो आप उनकी प्रशंसा उसकी नहीं करते हो। तो क्यों आपको इतना मतलब वो होता है, वो भी तो बाबा कराने वाला है ना, उसमें भी ये सोचना चाहिए ना कि बाबा हमें उनके द्वारा कराया है, चाहे किसके भी द्वारा कराओ लेकिन बाबा करा रहा है, ऐसे हमें सोचना चाहिए। क्योंकि बाबा को अगर हम बीच में नहीं लाएंगे तो क्या होगा, अपना हिसाब किताब बन जाएगा। वो हिसाब किताब तीसरा जन्म तो बनाया ही है, फिर अभी भी ज्ञान के हमें आने के बाद भी उनके साथ हम हिसाब किताब बनाते हैं तो फिर क्या होगा। एक बार हमारे पास एक ज्ञान में कोई आए थे, वो न्यूज़पेपर के एडिटर थे, मतलब कोई न्यूज़पेपर में बहुत बड़े थे। तो पहले दिन तो वो ज्ञान लिए, दूसरे दिन लिए, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई न्यूज़पेपर के लोग आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि भाई वो सेवा करेंगे न्यूज़पेपर के द्वारा। कोई इंजीनियर होगा तो हम ये सोचते हैं कि ये भाई इंजीनियर है, कोई बिल्डिंग वगैरह की प्लानिंग करने में अच्छा करेंगे, कोई मतलब कोई भी उनकी आर्ट होता है तो उनकी तरफ हमारा मन चला जाता है कि ये आर्ट से सेवा करेंगे, ये आर्ट से सेवा करेंगे। तो उसने मेरी बुद्धि बहुत खोल दी, वो एडिटर था, उसने बुद्धि खोली मेरी और उसने कहा कि देखो बहन जी, सिस्टर, मैं आया हूँ यहाँ पर, आप कभी भी ये समझना नहीं कि मैं आपको मदद करूंगा किसी भी प्रकार से न्यूज़पेपर में आपका आर्टिकल डालने के लिए। मैं आया हूँ क्योंकि मुझे अपना खुद का प्रॉब्लम है, मेरा फैमिली प्रॉब्लम है और इसके लिए मैं शांति प्राप्त करने के लिए आया हूँ, कोई न्यूज़पेपर की सेवा करने के लिए नहीं आया। तो मेरी बुद्धि में चला कि ये तो सबके लिए है ना, जो भी आते हैं ज्ञान में वो उनका एम है, उनको शांति चाहिए, उनको प्यार चाहिए, उनको खुशी चाहिए, कुछ भी चाहिए उसके लिए आते हैं ना। तो मेरा उसके मन से चला गया कि ये तो कुछ करने वाला नहीं है, तो बुद्धि चल गई भी अभी इसको शांति की वासना देनी है, इसको प्रेम की वासना देनी है। तो उसके बाद मैंने उसी प्रकार से वो एटीट्यूड थोड़ा होता है बुद्धि के अंदर, वो मैंने बिल्कुल निकाल दिया मन से, और ये चीज के अंदर मैं एंगेज हो गई कि भाई इनको शांति का अनुभव कराना है, प्रेम का अनुभव कराना है। और उसको थोड़े दिन के बाद अनुभव भी हुआ, उसके कुछ प्रॉब्लम्स थे वो कुछ काम डाउन हो गए, उसके उसके फैमिली मैटर्स थे काम डाउन हो गए। फिर उसके बाद 3 महीने के बाद वो बोलता है, सिस्टर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना अनुभव जो है वो न्यूज़पेपर में लिखवाऊं, वो खुद बोलता है। मतलब कहने का भाव ये है कि लोग जो हमारे पास आते हैं ना, वो शांति प्रेम आनंद ये चीजों के लिए आते हैं, और हम उसको ज्ञान सुनाते सुनाते हम ये सोचने लगते हैं कि ये सेवा इस प्रकार की करेगा, ये सेवा इस प्रकार की करेगा, और हम खुश होते हैं, अरे हमने तो इसकी प्राइम मिनिस्टर की सेवा की है तो वो कुछ करेगा, या ये मिनिस्टर कुछ करेगा, ये तो ये हमें बुद्धि से निकाल देना चाहिए। क्योंकि बाबा तो हमें ये कहते हैं कि ये जो VIP है ना, वो वेरी इनोसेंट पीपल है, इनको कुछ ज्ञान नहीं है, इनको पता भी नहीं है कि भगवान क्या चीज है। तो हमारे सामने तो बुद्ध ही है ना, ज्ञान के हिसाब से तो बुद्ध ही है। तो हम उन्हें ज्ञान का परिचय देकर के ज्ञान का अनुभव कराए, ये हमारा एम होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उनको रिस्पेक्ट नहीं देनी है, रिस्पेक्ट भी देनी है, लेकिन साथ साथ में अंदर में उनको शांति का अनुभव, ये एम नहीं होना चाहिए, ये बुद्धि में भी नहीं आना चाहिए कि ये इस प्रकार की सेवा करे या इस प्रकार की सेवा करे। हमको तो जितने भी हम जहां जहां गए हैं, छोटे छोटे कंट्री में भी गए, हमको ऐसा लगता है कि बाबा जो है वो प्रेरणा देने वाला है, वो कमाई करने वाला है और हम तो खर्च करने वाले, हमको ऐसा लगता है हम तो खर्च करने वाले हैं, सेवा के अंदर खर्च करते हैं, लेकिन कमाई करने वाले हम नहीं हैं। हमारी प्रेरणा से लोग नहीं करते हैं, प्रेरणा करने वाला तो बाबा है, वो ही छत्तर पार के किसी न किसी को प्रेरणा दे देता है और जो करना है वो करते हैं, और हम तो जो है जो हमें मिलता है उसको बाबा की सेवा के अंदर लगाते हैं, वही हम लोग काम करते हैं। तो हर प्रकार से किसी की भी कांटेक्ट में आए, चाहे लौकिक के कांटेक्ट में आए या अलौकिक के कांटेक्ट में आए, तो हमें यही समझना चाहिए कि हम इसको किस प्रकार बाबा का प्रेम का अनुभव हो, शांति का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो, बस ये हमें एक एम से सेवा करनी है, बाकी जो है दूसरी बातें जो है वो बाबा अपने आप करा लेगा, वो हमें सोचना भी नहीं है कि ये प्रेरणा दियो इसको ये करना ये करना इसको ये करना। मैं अपने पर्सनल लाइफ के अंदर ये नहीं करती हूँ, भले मतलब कि कोई भी किसी भी रूप में करते हो या ना करते हो, मेरा ये एम नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि खुशी मिलती है, कहाँ ना कहाँ उस सर्विस का असर होता है, क्योंकि मैं जहां पर रहती हूँ वो छोटी सी कंट्री है, मैं कोई बड़े बड़े कंट्री में नहीं रहती हूँ, अमेरिका में, कनाडा में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका, ऐसे बड़े कंट्री में हम नहीं रहते हैं, हम ऐसे छोटे कंट्री में रहते हैं जो दुनिया के अंदर एक बिंदु है, जैसे बाबा बिंदु है, आत्मा बिंदु है, इसी प्रकार हम एक बिंदु कंट्री में रहते हैं। अब इन बिंदु कंट्री में रहते हुए भी विश्व कल्याणकारी बनना, वो तो हम तभी कर सकते हैं जब हमारी बुद्धि जो है वो अनलिमिटेड हो। अगर लिमिटेड होंगी तो फिर वो एक ही कंट्री की, छोटे से कंट्री की सेवा होती है। तो हमको तो ऐसा लगता है भले कोई हमें कहां कुछ भी कहे, कहां से आए हैं, अरे हम तो त्रिनिदाद से आए, वो किसी किसी को तो नाम भी नहीं मालूम है कहां है कोई। यहाँ पे हम कभी कभी शॉपिंग करने आते त्रिनिदाद बोलते तो बोलते कोई साउथ इंडिया से आए क्या आप लोग तो कहां पर भी करो, कितने भी छोटे स्थान पे रहना तो हमें छोटे स्थान पे ही है ना, अच्छे है, लेकिन बुद्धि को मतलब अनलिमिटेड बना करके ही रखना पड़ता है। तो जैसे कि विश्व सेवा, जैसे विश्व की सेवा हम कर रहे हैं, हम एक माताओं हो, 25-30 आइलैंड है, 15 आइलैंड के अंदर सेंटर खुल चुके हैं, 15-16 आइलैंड में हमने सेंटर खोल दिए हैं, और वो क्या है छोटे छोटे टापू है जिसमें 1 लाख की पॉपुलेशन है, 10 लाख की पॉपुलेशन है, 20 लाख की पॉपुलेशन है, ऐसे ही कंट्री है ना, बड़े बड़े तो नहीं है, लेकिन मतलब कहने का भाव ये है कि हम एक ही जगह पे कितने गज जमीन में रहेंगे, इसीलिए तो कहते हैं ना 3 फीट जमीन जो कहते हैं, तो उसके अंदर रहते हुए भी मतलब ऐसा हमारी बुद्धि होनी चाहिए कि हम अनलिमिटेड सेवा करें। घर के अंदर 2-4 बच्चों की संभाल करते हुए भी ऐसा लगना चाहिए कि हम सारे विश्व के बच्चों की सेवा कर रहे हैं, हम तो 5 लोग के सामने बैठते तो ऐसा बात करते जैसे कि हम सारे विश्व की माताओं के सामने बात कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे ही बोलते हैं ना कि भाई एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली, तो जो एक्ट हम लोकली करते हैं उसका वाइब्रेशन तो सारी दुनिया में पड़ेगा ना, नहीं प्योर वाइब्रेशन होगा तो जरूर है कि सारी दुनिया के अंदर हो उसका। तो हमें तो ऐसा ही महसूस होता है कि हम विश्व की सेवा कर रहे हैं, कहां पर भी होंगे तो विश्व की सेवा कर रहे हैं, और विश्व की सेवा कर रहे हैं तो विश्व कल्याणकारी महसूस होता है, ऐसा नहीं लगता कि कोई कंट्री की सेवा कर रहे है, भारत की सेवा कर रहे है या इस देश की सेवा कर रहे है। जहां कहीं भी जाते हैं तो अपनापन भी महसूस होता है सेवा करते करते। तो बहुत अच्छा मतलब कि बाबा के ज्ञान में आने से ऐसा लगता है कि अभी भी यहाँ पर भी आए हैं तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या बाबा ने हमको कहाँ से कहाँ उठा के लेके आ गए, कितना हमको दुनिया से बचा दिया है। दुनिया के अंदर तो गृहस्थी में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, लौकिक में जाते हैं, उनके प्रॉब्लम्स ही खत्म नहीं होते, एक से दूसरा ये है बहन जी, ये है बहन जी, ये है बहन जी, अभी उनका सुनते रहो लेकिन मैं भी ये सोचती हूँ कि सुनने से भी उनका शायद उनका मन खाली हो जाता है, क्योंकि देवी देवताओं के सामने भी तो यही करते हैं ना लोग, बोलते रहते हैं, फिर उसके बाद उनको लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो यही हम सोचते हैं कि ब्राह्मीण आत्माएं भी जितने भी हम हैं, हमको हर समय कोई न कोई मदद के लिए याद करता है, नहीं? देवी देवताओं के रूप में जब वो भगवान को याद करते हैं, वो किसको याद कर रहे हैं? हमको याद कर रहे हैं, क्योंकि हम ही देवी देवताएं थे, अभी तक तो नहीं मालूम था लेकिन अब तो मालूम हो चुका है ना हमें। तो अगर भगत लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो भी हमें याद कर रहे हैं। लौकिक लोग होते हैं जो हम ज्ञान में चलते हैं, तो इतना क्रिटिसाइज करते हैं, ज्ञान से हटाने की इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन जब उनको प्रॉब्लम आते हैं ना, तो सबसे पहले ब्राह्मणों को याद करते, उनका कोई भी ब्राह्मणों की आत्मा होती है उनको याद करते, आपने देखा है वो, भले वो बोलेंगे नहीं ऊपर से, लेकिन वो कभी कभी बोल देते हैं, आपके बाबा को जाके बोल दो ना, ये प्रॉब्लम है, अभी ठीक कर देगा हमारा। और ब्राह्मीण आत्माएं भी जो होती है ना, जब उनकी स्टेज अच्छी होती है तब तो हम लोग बाबा को याद कर सकते अच्छी तरह से, लेकिन जब स्टेज ठीक नहीं होती है, कभी दर्द होता है या पेन होता है या कुछ प्रॉब्लम सीवियर होता है, तो बाबा की याद इतनी नहीं रहती, फिर दादियों को याद करते हैं, ब्राह्मणों को याद करते हैं, फ्रेंड्स को याद करते हैं। मतलब कहने का भाव ये है कि कोई न कोई हमें किसी न किसी रूप से याद करता है। अगर वो याद करते हैं, समझो अगर हमारी स्टेज उस समय ठीक नहीं रहेगी तो उसको मदद मिलेगी नहीं मिलेगी ना, चाहे हम सोते हुए भी ड्रीम में सो रहे तभी भी, चाहे हम जागते रहें, लेकिन उस समय अगर हमारे को कुछ, हमारा मन खराब हो जाता है, इरिटेशन हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, या कोई भी स्टेज हमारी ऊपर नीचे हो जाती है, तो उस आत्मा को शक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए हमें अपनी स्टेज को बनाने की ही कोशिश करनी चाहिए, अपने संकल्पों के ऊपर जितना हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते, तीन प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी चाहिए। एक संकल्प जो आते है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसने मेरे को ऐसा कहा इसीलिए मैं ऐसा सोचता हूँ, वो कोई कुछ भी कहे लेकिन मुझे जो सोचा है उसका तो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा बुरा तो मुझे भुगतना पड़ेगा ना। जो भी हमारी फीलिंग्स हैं उसकी भी हमें, हम ही रिस्पॉन्सिबल है। पहले तो ज्ञान के पहले, ज्ञान में आने के पहले हम ही कह देते थे कि मुझे इसने दुख दिया है, इसकी वजह से मैं बहुत दुखी हो गई हूं। ज्ञान में आने के बाद, समझ आने के बाद क्या मैं बोल सकती हूँ कि इसने मुझे दुख दिया इसीलिए मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, न दुख देना है न दुख लेना है। तो अगर आपको दुख हो रहा है तो मतलब आपने ले लिया है ना, इसीलिए आपको दुख हो रहा है। तो हमारी जो फीलिंग है अंदर की, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर, कोई के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और जो हमने चॉइस जिसको बोलते हैं या सिलेक्शन जिसको कहते हैं, जो हमने लिया है अपने ऊपर, चाहे वो ब्रह्मा कुमारी बनने का नहीं बनने का, जो भी हमने फैसला लिया है अपने जीवन का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे ऊपर है। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से मैंने ये फैसला लिया है, कैसा भी फैसला लिया हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर ही है, क्योंकि हमें भक्ति मार्ग के अंदर भी तो कई कहानियां हम सुनते हैं, वाल्मीकि की कहानी है पता नहीं किसकी, जिसमें उसने कहा कि वो चोरी करके अपने घर बार को देखता था, अपनी पत्नी बच्चों की देखभाल करता था, वाल्मीकि ना, तो देखते थे, फिर उसके भगवान ने उसे पूछा कि क्या आपका जो पाप करते हो सब कुछ बांटेंगे, तो उसने कहा हाँ क्यों नहीं बांटेंगे, क्योंकि मैं तो उनके लिए ही करता हूँ। तो बोला जाके पूछ के आ जाओ, तो पूछने लगा तो बोला कि वाइफ ने बोला कि ये तो आपकी ड्यूटी है, मैं तो आपकी वाइफ हूँ, आप किसी भी प्रकार से मेरी देखरेख करते हैं, तो मैं तो आपके किस प्रकार से देखरेख करते वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बच्चे से भी पूछा तो उसने भी कहा, तो मतलब कैसी भी सरकमस्टेंसेस हो, कोई भी परिस्थिति के अंदर, जो भी हमने फैसला लिया है, जो भी हमने चॉइस ली है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही होगी, कोई वो हमारे वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं कर सकता है। तो हम ये भी नहीं कर सकते कि इसकी वजह से मैंने, मेरे बच्चे थे इसीलिए किया, मेरे पति थे इसीलिए किया, मेरे नेबर्स की वजह से किया, इसने बतवा बोला इसलिए मैंने ऐसा फैसला लिया। जो भी आपने फैसला लिया वो आपने अपने लिए लिया है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, और उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसके जो भी होगा वो भी आपको ही भरना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से तीन चीजों की हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने संकल्प की, अपने फीलिंग की और अपने फैसले की। अगर हम तीन चीजों की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं अपने ऊपर, तो हम किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, किसी को ब्लेम करना या किसी को कहे कि भाई इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से, उसकी बात नहीं। फिर वो हम अपने आप ही, कोई हमारे सामने परीक्षा भी आएगी ना तो हम उसको पार कर लेंगे, क्योंकि हमने कुछ किया होगा तभी हमारे सामने परीक्षा आई है, तो हम उसको फेस कर लेंगे। इसीलिए फिर बाबा हमें क्या कहते हैं कि गुड विशेस रखो, मर्सीफुल फीलिंग रखो, दया भाव रखो, क्षमा करो किसी को। आप क्षमा करते हैं किसी किसी को अपने, तो वो क्षमा का क्या आप मतलब समझते हैं, क्षमा करने का मतलब क्या है? खुद को हल्का करना, बस बोल दिया कि हम आपको क्षमा कर दिए, हो गया काम पूरा। गुड विशेस कब निकलेगी? जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा ना, तब तक गुड विशेस नहीं निकल सकते। अगर मन के अंदर उसके प्रति अभी भी है तब हम नहीं। नंद नहीं, भक्ति मार्ग के अंदर मेरे को ये बात जरूर याद आती है कि जब प्रेयर हम लोग करते थे, आप लोग सबको पता होगा, वो बोलते हम ये है मैं चोर हूँ, डाकू, पता नहीं क्या क्या वो बोलते थे। फिर उसके बाद बोलते थे कि दूसरी लाइन में बोलते थे, भगवान मेरे जो अवगुण है ना चित्त पे नहीं रखो, मतलब दिल में नहीं रखो, दिल से निकाल दो, फिर मेरे ऊपर दया करना। वो तो लेते ही नहीं तो रखेंगे कहाँ से, अब्सॉर्ब जैसे अब्सॉर्ब ही नहीं करते, लेते ही नहीं है तो निकालने की कोई बात ही नहीं है। फिर भी मनुष्य जो है वो भगवान को याद दिलाता है कि आप मेरे हमारे जो अवगुण है ना उसको चित्त में नहीं रखो, जिससे निकाल दो, फिर हमारे पर मर्सी करो। लेकिन मनुष्य जो होते हैं हम जैसे, हम लोग उसको चित्त पे रख देते हैं पहले, फिर उसकी निकालने की कोशिश करते हैं। पहले से अगर हम चित्त पे न रखें तो हम गुड विशेस शुरू से दे सकते हैं ना, फिर क्या है थोड़ा समय के बाद स्थिति के अंदर जाता है, अंदर जाता है, फिर उसको निकालते हैं। तो मतलब कि माफी भी उसी को दी जा सकती है, क्षमा भाव भी तभी हो सकता है जब उस आत्मा के प्रति हमारा मन जो है क्लीन हो जाए। कई बार हम ऐसे कहते हैं कि हम सबको माफ कर सकती हूँ, मैं सबको माफ, सारी दुनिया को माफ कर सकती, लेकिन इसको नहीं माफ करूंगी क्योंकि वो जो है मुझे इतना दुख दिया है, इसीलिए मैं इसको माफ नहीं। तो उसके लिए पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा ना, गुड विशेस देने के लिए या क्षमा भाव। गुड विशेस ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण शब्द है गुड विशेष, शुभ भावना, शुभकामना ब्राह्मण शब्द है। दुनिया के लिए वो ही शुभ की शुभकामना को क्षमा भाव कहा जाता है। हमारे अंदर वो तो हॉन्टिंग हो जाती, कई बार ऐसा होता है वो जैसे वो कहते हैं भूत प्रेत पीछे पड़ जाते हैं, वो कईयों को भूत प्रेत नहीं पीछे पड़ते हैं, ये संकल्प ही पीछे पड़ जाते, इतना पीछे पड़ जाते कि लोग समझ, हम भी समझने लगते पता नहीं कौन सा भूत हमारे पर आ गया। इतना संकल्प जो है हॉन्टिंग करता है कि वो उसको छोड़ नहीं सकते, वो हॉन्टिंग करता ही रहता है। सोते हुए भी वही याद आती है, जागते हुए भी वही याद आती है, तो ऐसा लगता है कि भूत प्रेत ही आ गया है, लेकिन भूत प्रेत नहीं होता है। जब तक हम, कोई भी हमें सताता है या कोई भी हमें अपने सताता भी क्यों है, एक तो कर्मों का हिसाब किताब होता होगा, या पांच विकार जो है उसके वशीभूत होकर के कोई करते हैं। बाबा तो अभी कहते हैं कि जो उल्टे को भी सुलटा करने की कोशिश करो, मतलब कोई क्रोध में आता है समझो, तो उसके लिए क्या सोचेंगे, क्रोध करके हमको, क्रोध करता है तो हम उसको सीधा कैसे कर सकते हैं, करने प्यार से कर सकते। पहले पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये क्रोध करने वाला है ना, इज क्राइंग, मेरे को ऐसा लगता है ये अंदर की जो अंदर का दुख जो है वो बाहर निकाल रहे हैं. इज क्राइंग, क्राइंग फॉर हेल्प, मदद के लिए ये रो रहा है, परवश है, रो रहा है. क्रोध करना भी एक प्रकार का रोना होता है ना, मोह भी एक प्रकार का रोना होता है ना. कहते हैं ना कि प्यार के भिखारी, रिस्पेक्ट के भिखारी. तो भिखारी तो वही होगा जिसको मदद चाहिए, जो तो रिच होगा वो तो नहीं मांगेगा ना कोई चीज. नहीं, वो लौकिक है, वो मदद करने और मदद करना और उसके बाद किस प्रकार से मदद करना वो कॉन्शियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी अंदर की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है. उसमें एक होता है कि कर्मों का हिसाब किताब बनता है और एक होता है कर्मों का हिसाब किताब खत्म भी होता है. क्योंकि लौकिक के पास, जो हम लौकिक के पास रहते हैं, तो बाबा हमेशा कहते हैं कि आप कर्मों के हिसाब से नहीं गए हैं लौकिक पे, आप गए हैं वहां पर सेवा भाव से, कर बाबा की सेवा करने के लिए. तो इसमें कॉन्शियसनेस में कितना फर्क हो गया. कर्मों के हिसाब से जाते हैं तो कर्म कूटते ही रहते हैं, पता नहीं ये मेरा बंधन कब टूटेगा, मेरा बंधन कब टूटेगा. लेकिन अगर हम सेवा के लिए जाते हैं लौकिक के अंदर, तो बंधन की बात ही नहीं है, सेवा के लिए जा रहे हैं ना. सबको तो बड़ा सेंटर नहीं मिलेगा, सबको तो इतने स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, तो जहां हैं जैसे हैं वहां पर हम सेवा करते हैं. वहां पे ज्ञान नहीं सुना सकते हैं लौकिक के अंदर, तो कम से कम हम प्यार से खाना खिला सकते हैं, बाबा की याद से खिला सकते हैं. बेटे बहू को नहीं खिला रहे लेकिन बाबा के बच्चों को खिला रहे हैं. तो कॉन्शियसनेस अगर हम चेंज कर देते तो लौकिक के अंदर भी हम सेवा कर रहे हैं. अगर कॉन्शियसनेस के अंदर हमारा ही अटैचमेंट होता है, खास करके बेटे उससे छोड़, बेटे बहू से छत खत्म हो जाता है, बेटे बेटियों से तो पोतरे पोतरियों से छोड़ हो जाता है. अरे ये तो बाबा का बच्चा ही घर में आया है, ऐसा कई बार होता है. ये तो कोई आत्मा ना, यज्ञ की आत्मा निकली हुई है, ऐसे ऐसे करके भी वो अटैचमेंट में आ जाते हैं. तो कर्मों का हिसाब किताब तो बनेगा ना उस समय. तो सबको ही भगवान का बच्चा देखो, सभी को बाबा का बच्चा देखो, क्यों उसको बाबा का बच्चा देख रहे. थोड़ा अलौकिक भी होगा तो क्यों हम उसको बाबा के रूप में देखेंगे, तो आगे बढ़ जाएंगे. तो कहने का भाव ये है कि हम लोग जो है गुड विशेस तो तभी रख सकते हैं जब अपना मन जो है शांत हो जाता है, अपना मन जो है वो क्लीन होगा, तब हम उनको गुड विशेस दे सकते. क्या हम गुड विशेस से किसी के कर्मों को बदल सकते हैं? फिर वो गुड विशेस कैसे काम करती है? बदल सकते हैं कर्म के कुछ बदल होता है, कर्मों में कुछ बदली होता है जरूर, लेकिन वो बदली इस प्रकार से होता है, उसका मैकेनिज्म ये है, उसकी जो कहानी है उसकी ये है कि अगर हम कोई हमारे सामने व्यवहार कुछ करता है, नेगेटिव व्यवहार करता है समझो हमारा, तो उससे क्या होता है, हम भी नेगेटिव हो जाते हैं. तो मतलब ये कि एटमॉस्फेयर बदल जाता है, एक भारीपन आ जाता है. तो नेगेटिव में नेगेटिव निकलेगा, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव निकलेगा, तो उसके भी नेगेटिव संस्कार निकलने लगते हैं. हमारे नेगेटिव होने से उनके भी नेगेटिव संस्कार निकलते हैं, वो पॉजिटिव निकलेगा ही नहीं. लेकिन अगर हमने गुड विशेस के द्वारा पॉजिटिव, हमारा एक तो इफेक्ट में नहीं आया, दो चीजें होती है, एक तो इफेक्ट में नहीं आना और दूसरा जो है उसके प्रति शुभ भावना रखना. जैसे बैंक में जो होता है आप बैलेंस रखते हैं, तो अगर इफेक्ट में आते हैं तो आपका अंदर का बैलेंस खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, खत्म नहीं होता है, कम हो जाता है. और जब कम हो जाता है तो आपको खुशी होगी नहीं होगी? तो इफेक्ट में आना मतलब कि अपना खराब किया हुआ बैंक बैलेंस को कम कर देना, अपनी कमाई जो हो चुकी है उसको कम कर देना. तो इफेक्ट वो तो हमारा भी नुकसान हुआ और दूसरों का भी नुकसान हुआ, दूसरों के सामने भी हमने नेगेटिव वाइब्रेशन रख दिए। तो एक तो वो बैंक बैलेंस को हमको खत्म नहीं करना है, कम नहीं करना है। लेकिन अगर बैंक बैलेंस जितना है उतना ही रहता है हमेशा के लिए, तभी भी खुशी नहीं होती है, बढ़ता है तब खुशी होती है। तो फिर उसके बाद दूसरा तरीका यह है कि उस आत्मा के प्रति गुड विशेस रखो। और गुड विशेस रखने से क्या होगा, अपना बैलेंस बढ़ जाएगा और एटमॉस्फेयर उस आत्मा के सामने अच्छा हो जाएगा, और वो एटमॉस्फेयर के अंदर अच्छी अच्छी चीजें उसके अंदर से निकलेगी, अच्छे वाइब्रेशन से उसके अंदर अच्छी चीज निकलेगी। तो उसका जो ब्लॉक है ना, वो ब्लॉक जो है वो क्लियर हो जाएगा और उसका कर्म का हिसाब किताब अपने आप ठीक होगा। आप नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप ठीक होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव निकलेगा तो उसका कर्मों का हिसाब किताब बढ़ जाएगा, अगर पॉजिटिव निकलेगा तो उसका कर्मों का हिसाब किताब अच्छा हो जाएगा। तो वो अपने आप ही उनके कर्म जो है ठीक हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना ब्लेसिंग देव, लोग कहते हैं ब्लेसिंग देव, ब्लेसिंग का इतना महत्व रखते हैं हम लोग भक्ति मार्ग में भी। ब्लेसिंग देव, ब्लेसिंग का मतलब ये थोड़ी है अंदर में उसके प्रति खराब बातें सोचेंगे और बाहर में सर पे हाथ पे रख देंगे, सर पे हाथ रखने, ऐसा तो नहीं है। हाँ, एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए, अगर एक्सपेक्टेशन होती है वो भी तो एक नेगेटिव संस्कार हो गया ना, नेगेटिव हो गया। तो मतलब ये है कि किसी भी परिस्थिति के अंदर हमको ना अपना नुकसान करना है, दूसरों के सामने पॉजिटिव वाइब्रेशन रखना है, और यही करने से उनका अपने आप ही कर्मों का हिसाब किताब बढ़ता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, उनका जीवन सफल ही होता जाएगा। अच्छा, उसमें भी हम एक छोटी सी बात आप बताना चाहेंगे कि वाइब्रेशन हम जो है लाना है, लेकिन उसके साथ में मेरा ऐसा विचार है, मतलब कि पहले हम भी जो हम करते थे और अभी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता आ जाता है हमको, क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि इसको एक एम होता है हमारे मन में कि इसका जो संस्कार है ना बहुत अशांति का संस्कार है, तो ये शांत हो जाना चाहिए। उसके अंदर हमारा जो स्वार्थ ये है वो शांत हो जाए तो मेरा संस्कार ना निकले। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई वो अशांत रहता है तो मैं भी अशांत हो जाती हूँ, तो उसमें स्वार्थ ये होता है कि वो शांत हो जाए तो मैं भी शांत हो जाऊं। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम गुड विशेस भी रखें किसी के प्रति, तो गुड विशेस किसी एम को रख करके ना रखें, उसमें भी सेल्फलेस होना चाहिए। चलो हम उसको गुड विशेस देते हैं, हम ऐसा विश गुड विशेस न दे कि भाई इसका क्रोध शांत हो जाए, ये गुड विशेस न दें। इसकी जगह पर हम ऐसा गुड विशेस दें कि बाबा कुछ अच्छाई इसके जीवन में हो जाए, कुछ अच्छा हो। क्यों हम क्रोध के ऊपर उसको गुड विशेस दें, क्यों एक चीज को सामने रख करके गुड विशेस दें? कुछ भी हो सकता है, उसको शांति की जगह खुशी मिल जाए। हम ये तो नहीं कह रहे कि उसको शांत हो या खुशी हो, या हम कहते हैं जो इसके अंदर भला हो वो हो, समथिंग गुड मस्ट हैपन। इसको कोई ऐसी कुछ गुड हो, कुछ लॉटरी जैसे मिल जाए, इसके जीवन के अंदर कोई ऐसी नई अपॉर्चुनिटी आ जाए। अभी उसको इसके लिए क्या अच्छी चीज है वो तो मुझे नहीं मालूम ना। भक्ति के अंदर जो है कई लोग, मैं जब छोटी थी तो इसके ऊपर मेरे को थोड़ा ध्यान जाता था कि बड़े लोग होते थे ना तो छोटे लोग सर नीचे करते तो उनको ब्लेसिंग, मनो इच्छित फल प्राप्त। अभी मुझे पता नहीं उनकी इच्छा क्या है, और अगर है भी मुझे पता है कि चलो इसको जॉब नहीं है, बेचारे को जॉब मिल जाए तो अच्छा है, या इसकी बीमारी है, इसकी बीमारी ठीक हो जाए तो अच्छा है। अगर वो अगर है भी हमारे मन में तो वो हम बोल सकते हैं बाबा को कि मैं ये समझती, लेकिन फिर भी आप इसमें जिस चीज के अंदर इनका भला वो हो गए बस। हम अपनी इच्छा बोल भी देते हैं बाबा के सामने, लेकिन उस इच्छा को पकड़ करके उसके ऊपर ही हमें नहीं देना है, लेकिन जो जिसमें इसकी भलाई हो वो होना चाहिए। कोई हमारे सामने आता है, कोई बोलता है बहन जी हमारे ये प्रॉब्लम है, आप थोड़ा मेडिटेशन करना, साकाश देना, हम क्या कहेंगे? नहीं देंगे हम उनको, वो कहेंगे नहीं हमें नहीं करना। नहीं, हम कहते हैं कि हाँ हम देंगे, जरूर देंगे, लेकिन जब हम देते हैं ना, तब बाबा को बोल देते हैं, बाबा ये भाई या बहन है इनको ये प्रॉब्लम है, ये चाहते हैं, लेकिन मैं ये सोचती कि आप जो है वो जाने जाना रहे, आपको जिसके अंदर उसकी भलाई हो वो होना चाहिए बस। फिर हम उसको छोड़ देते हैं, तो उसके अंदर कोई इच्छा के द्वारा इसके अंदर ये परिवर्तन हो, इसके अंदर ये परिवर्तन हो, ये परिवर्तन, उस चीज को भी हम थोड़ा छोड़ दें, बाबा को सौंप दे, या बाबा को सौंप दे, ये हम समझते हैं। तो अगर हम वो सौंप देंगे ना, फिर हमारी उसके प्रति ये नहीं होगा कि ये हो कोई बीमार है, अच्छा हो या खराब हो, या ज्यादा बीमार हो जाए या कम बीमार हो जाए, हम बोल देते बाबा ये बीमार है, ये सब लोग चाहते हैं कि अच्छा हो जाए, हम भी चाहते हैं, सब कौन चाहता है कि अच्छा ना हो। लेकिन फिर बाबा को सौंप करके, बाबा जिसमें इसकी भलाई हो वो होना चाहिए बस, ये आप सामने करके आप गुड विशेस देंगे तो आपको, आप हल्के हो करके गुड विशेस देंगे। और उसमें नहीं चलता है, लेकिन अब नहीं, हम देते हैं एक दूसरे को, देते हैं गुड विशेस, कोई कॉज के ऊपर भी देते हैं किसी का, वो बोलते हैं, लेकिन वो अंदर में हम क्या सोचते हैं वो तो हमारे ऊपर डिपेंड है। कर हम उनको तो नहीं बोलेंगे नहीं देंगे, हाँ हम देंगे, जरूर देंगे आपको आपके, लेकिन जब हमें अपनी एक्सरसाइज करनी है गुड विशेस की, तो हम बाबा को सौंप दे, और फिर उसके बाद हम उस आत्मा के प्रति जो भलाई जो बाबा चाहता है वो होना चाहिए बस, जो हम चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो नहीं, जो बाबा चाहता है वो होना चाहिए। और बाबा को जो बाबा की भी चाहना क्या है, जिसमें उसकी भलाई हो, भलाई होंगी उसी में ना, कोई मर जाता है तो उसमें भी उसकी भलाई है, जीता है तो उसमें भलाई है, तो जो भलाई है उस वो होए ना अपने को, इसमें क्या हो कि गुड विशेस की जो प्यूरिटी है ना वो ज्यादा हो जाती है। किसी चीज को हम पकड़े नहीं, किसी को हम बदलने के लिए गुड विशेस ना दें। वो अपने आप को समझाने की बात है कि मतलब इसमें भी कुछ भला होगा, बाबा बाबा जो है वो भला कर रहा है, तो हर चीज को हम नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना चाहिए। एक बार मैं ऐसे हंसी हंसी में किसी को बोल रही थी, मैंने कहा ये जो भाई है ना, ये इसको ज्ञान योग करने की जरूरत नहीं है, इसके पाप तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ऐसे ही मैंने हंसी की। तो एक बहन जो है बहुत चौंक गई, बोला ऐसे कैसे हो सकता है, बाबा तो कहते हैं कि बिना योग के पाप नहीं भस्म होंगे, इसका कैसे पाप भस्म हो जाएगा। तो मैंने कहा कि सब लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं ना, तो सबके तो पाप बढ़ जाते हैं और इसका पाप घट जाता है, तो सब लोग हंसने लगे। ऐसा हो सकता है ना, अगर कोई मेरे को क्रिटिसाइज करता है और मैं उसके ऊपर, मतलब कि अगर मैं उसके ऊपर इफेक्ट में आ जाती हूँ तो मैं अपने कर्मों का हिसाब किताब बढ़ा लेती हूँ, लेकिन अगर नहीं बढ़ाती हूँ, उसका इफेक्ट मेरे पर नहीं होता है, मैं गुड विशेस देती हूँ, तो मेरे विकर्म तो कम होंगे ना, जरूर होंगे ना कम। तो इसके अंदर क्या है, ये भी एक मजे की बात हो जाती है, मतलब कि चलते फिरते जैसे बाबा कहते हैं कि ये जो बहारों का समय है, बहारों में चलते रहो, बाहरी मौसम कहते हैं संगम युग को, तो बाहरी मौसम कहते हैं, अभी भी अगर हम अपने अंदर फाइट करते रहेंगे तो कब तक चलते रहेंगे। तो अभी तो बाबा को सौंपते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, अपनी बुद्धि इतनी नहीं चलानी है कि यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसमें अपनी ताकत आजमानी चाहिए कि भाई ये होता है तो मेरी, मैं बहुत ताकतवर हूँ, ये नहीं होता है तो ताकतवर नहीं हूँ। नहीं, जो होना है वो तो होगा ही, बाबा को हम आगे करके चलते रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और बाबा के सिवाय हमारे पास है भी कौन के अलावा तो कोई है ही नहीं हमारे पास, तो बाबा को ही आगे बढ़ करके चलना होगा। तो अच्छाई में भी अच्छाई है और बुराई में भी अच्छाई है, बस उसको भी गुड विशेस देना है, बस कुछ नहीं। बोलो आप चले जाओ, आपको बहुत अच्छा घर मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, बहुत शांति मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। गुड विशेस करते रहो और आगे बढ़ते रहो। मरने जो वो ऐसे वो वालों को तो जल्दी अपनी गुड विशेस जाती है, जीने वालों को तो गुड विशेस देने के लिए बहुत मुश्किल लगता है। वो लोग को गुड विशेस जल्दी जाती है क्योंकि वो फ्री होती है ना आत्माएं। लेकिन जो गुड विशेस जब देते हैं ना, तो इतनी गुप्त होनी चाहिए कि उनको मालूम नहीं होना चाहिए कि हम गुड विशेस भी दे रहे हैं। मालूम होता है तो कभी कभी ब्लॉक कर लेते हैं। नहीं, कई कई बार होता है कि अभी हम किसी को कुछ देते हैं और जतला करके देते हैं, देखो मैं ये दे रहा हूं आपको, आपका लेने का दिल होगा? नहीं होगा ना, लेने का दिल नहीं होगा। ये क्या है, देना है तो दे देवे ना, बोलने बोल करके क्यों देते हैं? तो ऐसे ही गुड विशेस भी अगर बोल कर देंगे कि हाँ हाँ हम गुड विशेस दे रहे हैं, तो वो ब्लॉक कर सकते हैं। और अगर ब्लॉक ना करे, उसको अच्छा लगता है आपके गुड विशेस, सो अटैचमेंट भी पैदा हो सकता है आपके प्रति। ना हमें अटैचमेंट पैदा करना है, ना किसी को ब्लॉक करना है। तो ऐसा रखना है ना, गुड विशेस ऐसी चीज है जो सेवा भी करो और मेवा भी खाओ, और कर्मों का हिसाब किताब भी नहीं बनता है। और फिर जहां जहां हमें प्रैक्टिकल में चांस मिलता है वो ले लेते हैं। जैसे आज हमें एक चांस मिला क्लास करने का, तो हम ले लिए। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, उसमें भी हम, ये बाबा की सेवा 24 घंटे की सेवा है, एक मिनट की सेवा नहीं है। अगर शब्दों से नहीं कर सकते तो मन से तो कर सकते है? मन से नहीं कर सकते तो कर्म कैसे कर सकते है? तो सेवा तो 24 घंटे की सेवा है। अच्छा जी, ओम शांति।